आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
SBS हिंदी सेवा के सभी श्रोताओं को नई दिल्ली से मनन कुमार का नमस्कार। पेश हैं भारत के समाचार। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की संसदीय पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने अपने ताजा लेख में गाजा में तबाही और ईरान के खिलाफ बिना उकसावे के बढ़ते तनाव पर मोदी सरकार की कथित चुप्पी को भारत की नैतिक और कूटनीतिक परंपराओं से विचलित करने वाली विदाई बताया है। उन्होंने लिखा कि यह न केवल भारत की आवाज का खो जाना है बल्कि मूल्यों का समर्पण भी है। उन्होंने अमेरिका के अंतहीन युद्धों के खिलाफ बोलने के बाद पश्चिम एशिया में विनाशकारी रास्ते पर चलने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी आलोचना की। ईरान के ऊपर 13 जून को शुरू किए गए इजरायली हमलों को एक तरफा सैन्यवाद और गैर कानूनी करार देते हुए श्रीमती गांधी ने लिखा कि इस मानवीय आपदा के सामने नरेंद्र मोदी सरकार ने शांतिपूर्ण दो राज्य समाधान के लिए भारत की दीर्घकालिक और सैद्धांतिक प्रतिबद्धता को लगभग त्याग दिया है, जो एक संप्रभु स्वतंत्र फिलिस्तीन की कल्पना करता है, जो आपसी सुरक्षा और सम्मान के साथ इसराइल के साथ साथ रह सके। उन्होंने भारत सरकार को सलाह दी कि अभी भी बहुत देर नहीं हुई है, भारत को स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए, जिम्मेदारी से काम करना चाहिए और तनाव को कम करने और पश्चिम एशिया में बातचीत की वापसी को बढ़ावा देने के लिए हर उपलब्ध राजनयिक चैनल का उपयोग करना चाहिए। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार के किसी भी बड़े नेता ने श्रीमती गांधी के इस लेख का कोई जवाब नहीं दिया है। इस बीच संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ईरान के कथित परमाणु बम के लिए परिष्कृत यूरेनियम बनाने वाले अड्डों पर बमबारी किए जाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से बात की। इसकी जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, मैंने ईरान के राष्ट्रपति से बात की, हमने मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की और तनाव बढ़ने को लेकर गहरी चिंता जताई। मैंने तनाव कम करने, संवाद और कूटनीति को प्राथमिकता देने की अपील की और क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता की शीघ्र बहाली की जरूरत पर जोर दिया। भारत ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक कुल 1,117 भारतीयों को ईरान से सकुशल निकाल चुका है। ईरान के मशहद से एक और हवाई जहाज शनिवार रात 11:30 बजे 290 भारतीय नागरिकों को लेकर नई दिल्ली पहुंचा। इससे पहले शाम 4:30 बजे भी 310 नागरिकों का जत्था राजधानी पहुंचा था। ईरान से दिल्ली पहुंचे यात्री हवाई अड्डे पर उतरने के बाद वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए दिखे। बहुत से लोग भावुक दिखे और कई लोगों ने भारतीय सरकार की भूरी भूरी प्रशंसा भी की।
अरे वापस आए, बहुत खुश है मोदी जी का, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कह रहे हैं कि जो मेरी सरकार ने हम लोग को भेजा, वहाँ की सरकार ने भी हम लोग का साथ दिया और मेरी सरकार ने मुझे यहाँ बुला लिया।
भारत ने नेपाल और श्रीलंका के नागरिकों को भी ईरान से निकालने का बीड़ा उठाया है। भारत के इस कदम को पड़ोसी देशों के साथ संबंध बेहतर करने की कोशिश माना जा रहा है। शनिवार 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भारत भर के कई शहरों में लाखों लोगों ने भाग लिया। इस बार योग दिवस का विषय था एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश राज्य के सबसे बड़े शहर विशाखापत्तनम में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के साथ योग दिवस में भाग लिया। उन्होंने इस अवसर पर योग के लिए एकत्रित लोगों को भी संबोधित किया।
The theme of this year's International Day of Yoga is Yoga for One Earth, One Health. This theme reflects a deep truth the health of every entity on earth is interconnected. Human well-being depends on the health of the soil that grows our food, on the rivers that gives us water, on the health of the animals that share our ecosystems, on the plants that nourish us. Yoga awakens us to this interconnectedness. Yoga leads us on a journey towards oneness with the world.
12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया उड़ान संख्या 171 बोइंग 387 विमान हादसे के बाद DGCA यानी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयर इंडिया पर नकेल कसते हुए गंभीर चेतावनी दी है कि अगर फ्लाइट ऑपरेशन में गड़बड़ियां जारी रहीं तो एयरलाइन के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा सकते हैं। DGCA ने यह चेतावनी पायलट ड्यूटी शेड्यूलिंग और निगरानी में लगातार और गंभीर उल्लंघनों के कारण दी है। शनिवार को DGCA ने एयर इंडिया को 3 अफसरों को तुरंत प्रभाव से क्रू शेड्यूलिंग और रोस्टरिंग से संबंधित सभी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से हटाने का आदेश दिया। तीनों अफसरों के खिलाफ यह कार्यवाही एविएशन सेफ्टी प्रोटोकॉल के गंभीर उल्लंघन को लेकर की गई। DGCA नोटिस के अनुसार एयरलाइन की 16 और 17 मई को बेंगलुरु लंदन उड़ानों की मौके पर जांच के दौरान ये उल्लंघन पाए गए, जहां उड़ान समय ने 10 घंटे की समय सीमा लांघ ली थी। भारत नियंत्रित कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के 2 महीने बाद NIA यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 2 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया है। NIA की जांच के अनुसार इन दोनों ने हमले को अंजाम देने वाले 3 लोगों को पनाह दी थी। पूछताछ में दोनों ने हमले में संलिप्त लोगों की पहचान बताई और पुष्टि की कि वे पाकिस्तानी नागरिक थे और प्रतिबंधित संगठन लश्करे तैयबा से जुड़े हुए थे। NIA के मुताबिक इन्होंने हमले से पहले तीनों हमलावरों को एक अस्थायी झोपड़ी में ठहराया था और उन्हें खाना पीना और अन्य सुविधाएं मुहैया कराई थी। और अब पेश हैं खेल जगत के समाचार। इंग्लैंड के साथ खेली जा रही 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच के 3रे दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने दूसरी पारी खेलते हुए 96 रनों की बढ़त बना ली है। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। भारत के पहली पारी में 471 रनों के जवाब में इंग्लैंड ने 465 रन बनाए। दूसरी पारी की शुरुआत में भारत ने यशस्वी जायसवाल का विकेट जल्दी ही खो दिया, तब वे केवल 4 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर ब्राइडन कार्स की गेंद पर विकेटकीपर जेमी स्मिथ द्वारा लपके गए। पहली पारी में जायसवाल ने 101 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया था। भारत का दूसरा विकेट 82 रन पर साई सुदर्शन का गिरा, जिन्हें बेन स्टोक्स ने 30 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट किया। 3 दिनों के खेल के बाद पहला टेस्ट मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच गया है, जहां ड्रॉ समेत सभी नतीजे संभव हैं। तो ये थे अब तक के समाचार। नमस्कार।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।